बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir, और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है सेहूनी हुकूमत की हालिया दहशतगर्दी। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए। अंदाज़े जहाँ नाज़रीन, एतवार की शाम सेहूनी हुकूमत ने शाम के इलाके कुनैतरा में अपने एक जारहाना हमले में ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के एक सीनियर कमांडर और हिजबुल्लाह के जवासाल कमांडर जिहाद मुगनिया समेत कई सिपाहियों को शहीद कर दिया। आज के प्रोग्राम में हम गासिब सेहूनी हुकूमत के इस जारहाना इकदाम के मुहर्रिकात और अहदाफ और इसके नताइज का जायजा लेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
शाम में सहनी हुकूमत की हालिया जारहियत और हिजबुल्लाह लेबनान के कुछ अराकीन और पासदारान इनकलाब फौज के कमांडर की शहादत पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। शाम के कुनैतरा इलाके में सहनी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से एक हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई अराकीन और पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अल्लाह दादी शहीद हो गए। इस हमले में शहीद होने वालों में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर शहीद इमाद मुगनिया के बेटे जिहाद मुगनिया भी शामिल थे। इस्लामी जमहूरी ईरान ने सैन्य हुकूमत की इस जारियत की शदीद मजम्मत की है, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान ने मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। इस्लामी जमहूरी ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर अली लारिजानी ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह के नाम अपने पैगाम में सैन्य हुकूमत के इस दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत की है। डॉक्टर अली लारिजानी के बयान में कहा गया है कि कुनैतरा में बैतुल मुकद्दस के गासिब सहनी हुकूमत के दहशत गर्दाना हमले में हिजबुल्लाह के मुजाहिदों की शहादत से एक बार फिर ये बात सामने आ गई है कि दहशत गर्द गुरोह और बैतुल मुकद्दस की गासिब हुकूमत आपस में मिले हुए हैं और वो मुख्तलिफ मैदानों में हिजबुल्लाह की काबिले फख्र कामयाबियों से चिरागपा हैं। इस्लामी जमहूरी ईरान के पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के सरबराह अलाउद्दीन बुरुजर्दी ने भी सैयद हसन नसरुल्लाह के नाम अपने पैगाम में जनूबी शाम में सैन्य हुकूमत के दहशत गर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। इस्लामी जमहूरी ईरान के इंटेलिजेंस के वजीर महमूद अलवी ने भी कहा है कि जनूबी शाम में ईरान के पासदारान इनकलाब इस्लामी फौज के कमांडर और हिजबुल्लाह लेबनान के अराकीन की शहादत ने गासिब इसराइल की दहशत गर्दी को मजीद वाजह कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग कुफर के महाज के मुकाबले और शाम की मजलूम कौम और हुकूमत की तकफीरी दहशत गर्दों के मुकाबले में मदद के लिए मशवरती मिशन पर थे। अक्वामे मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक ने शाम के कुनैतरा इलाके में सैन्य हुकूमत के हमले की रिपोर्ट के बाद शाम और सैन्य हुकूमत के दरमियान सन 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। ये ऐसी हालत में है कि शाम के वजीर इत्तलात इमरान अज़ज़ग़बी ने सैहूनी हुकूमत की जारहियत और दहशत गर्दाना इकदामात पर अक्वामे मुत्तहिदा के संजीदा रद्देअमल का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने तमाम जंगें अपनी हिमाकत से शुरू की हैं, जबकि लेबनान के स्पीकर नबीह बिर्री ने इस जारियत की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल लेबनान में अमन का खाह नहीं है और जब भी अमन कायम होने लगता है वो जारियत के जरिए बदमनी फैला देता है। सैन्य हुकूमत के इस दहशत गर्दी की फिलिस्तीनी तंजीमों ने भी सख्त मजम्मत की है, जबकि इस्लामी जमहूरी ईरान की वजारत खारजा ने इस जारियत की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस हमले से एक बार फिर ये वाजे हो गया कि शाम की जंग सैन्य हुकूमत के खिलाफ महाजाराई है और हिजबुल्लाह के जंगजू इलाकाई अकवाम के उमूर में गैर मुल्कियों की मुदाखलत के खिलाफ जिहाद और शहादत के मैदान में साबित कदम है। इन हालात में सहयोनी जराए जंग के खदशे की तरदीद कर रहे हैं और सहयोनी वजीर जंग मोशे आलून ने उम्मीद जाहिर की है कि हिजबुल्लाह से हालिया कशीदगी जंग पर मुंतज नहीं होगी। यह ऐसी सूरत में है कि शाम के हुक्काम ने कहा है कि सहयोनी हुकूमत ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा दमिश्क के सामने तमाम रास्ते खुले हैं। उधर हिजबुल्लाह लेबनान के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने अरबी में दो लफ्जों का एक पैगाम दिया है, जिससे सहयोनी हुकूमत में बेचैनी फैल गई है। कुनैतरा में सैन्य हुकूमत के दहशत गर्दाना हमले और हिजबुल्लाह के कई अराकीन की शहादत के बाद अपने पहले पैगाम में सैयद हसन नसरुल्लाह ने सैहूनी हुकाम को मुखातब करते हुए कहा है कि वो अपनी पनाहगाहें तैयार रखें।
जी हाँ, सैहूनियों अपनी पनाहगाहें तैयार कर लो, ये अल्फाज हैं सैहूनी हुकूमत के नाम हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह के पैगाम के اور ان کے ان الفاظ نے پورے مقبوضہ فلسطین میں خوف و وحشت کی لہر دوڑا دی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا یہ پیغام حزب اللہ کی سائٹ پر حسن نصر اللہ کی تصویر کے ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ اس پیغام کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ عامہ نے اپنی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اس کو اپنے حالیہ جارحانہ اقدام کے انتہائی دردناک انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حزب اللہ اور ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر شام میں کیا کر رہے تھے، اس لیے میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ حزب اللہ اور ایران کے فوجی کمانڈر دمشق حکومت کی دعوت پر تکفیری دہشت گردوں داعش اور جبہت النصرہ کے مقابلے میں شام کی افواج کو ضروری صلاح و مشورہ دینے کے لیے شام میں موجود ہیں، اور قنیطرہ میں جبہت النصرہ کا مرکز ہے جس کی حفاظت غاصب صہیونی حکومت کرتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت اسی طرح شام کے علاقے رقہ پر قابض داعش کے دہشت گردوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اور جب بھی شام کی افواج رقہ یا قنیطرہ کی طرف بڑھتی ہیں اسرائیل ہوائی حملے کرتا ہے۔ اسرائیل کھل کے تکفیری دہشت گرد گروہوں داعش اور جبہت النصرہ کی حفاظت کر رہا ہے، اور نام نہاد داعش مخالف اتحاد بنانے والے امریکہ نے آج تک تل ابیب سے یہ سوال نہیں کیا کہ داعش اور جبہت النصرہ کی پشت پناہی کیوں کی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم غاصب صہیونی حکومت کے تازہ جارحانہ اقدام کے محرکات و اہداف کے ساتھ ہی اس پر آنے والے عالمی رد عمل کا بھی جائزہ لیں گے، اور اسی کے ساتھ اس بارے میں بھی اپنے معزز مہمانوں کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد صہیونی حکومت کی جارحیت پر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کیوں خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن اسٹوڈیو سے برے صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر قیصر امام، اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس، اور دہلی اسٹوڈیو سے ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شکیل شمسی حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر قندیل عباس سے جو ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قندیل عباس صاحب السلام علیکم۔ جی قندیل عباس صاحب، صہیونی حکومت کی حالیہ جارحانہ کاروائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی وعلیکم السلام۔ دیکھیے انتہائی قابل مذمت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں پر بھی کشیدگی پائی جاتی ہے وہاں پہ امن پسند قوتوں کا پوری کوشش یہ ہے کہ وہاں پر شدت پسندی کو ختم کر کے امن و امان کی صورتحال قائم کی جائے، اور مڈل ایسٹ میں بھی یہی صورتحال ہے، مشرق وسطی میں بھی، چونکہ مختلف ممالک میں بہت سے زیادہ کشیدگی پائی جاتی ہے اور خاص طور پر اس کشیدگی کا مرکز صہیونی حکومت ہے، اور صہیونی حکومت کے خطے میں اقدامات کی وجہ سے پورے خطے میں بے چینی کی فضا پائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں امن و امان کے لیے ہونے والی جو کوششیں ہیں، خاص طور پر سیریا کے بحران کو حل کرنے کے لیے روس میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور اس بحران کو جو ایک اس میں اور زیادہ پیچیدگی اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں کافی رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں، اور ایران کی ڈپلومیسی، روس کی ڈپلومیسی کی وجہ سے، اور بین الاقوامی سطح پر جو امن پسند قوتیں ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ بحران اب اپنے حل کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں پر ایک پرامن فضا نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پر جو شدت پسندی تھی اس کی بھی شکست ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز کا اقدام صہیونی حکومت نے کیا ہے، یہ ایک ایسی کوشش نظر آ رہی ہے کہ خطے میں ایک فل فلیج وار، ایک پوری جنگ کے آگ بھڑکا دی جائے، اور چونکہ شام کے سرزمین پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس کا جواب شام کی طرف سے اگر ڈائریکٹ دیا جاتا، ظاہر ہے ایک بھرپور جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، اگر حزب اللہ بھرپور کوئی جواب دیتی ہے اس سے بھی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی صہیونی حکومت کے ایک دفعہ پھر اگر جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو ایک جسٹیفیکیشن، اس بات کی پیدا ہوتی ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں بھی آئیں اور اس خطے میں مداخلت کریں، میرا خیال ہے اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ سہونی حکومت نے جو اقدام کیا ہے یہ اس کے جواب میں حزب اللہ نے یا حسن نصر اللہ نے نپت اللہ جواب دیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی اہداف کو ٹارگٹ کے مطابق اس کا جواب دیں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت خطے میں امن کی ضرورت ہے اور اس طرح کے اقدامات جو سہونی حکومت کر رہی ہے اس سے اس خطے میں مزید جنگ کی آگ بھڑکانا مقصود تھا, لیکن اگر اس کو بین الاقوامی برادری نے, یونائٹڈ نیشن نے, خاص طور پر سلامتی کونسل کی ذمہ داری انہوں نے روکنے کی کوشش نہ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جانے والے حالات بہت زیادہ پیچیدگی اور خرابی کی طرف جا سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ قندیل عباس صاحب, اور چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں برصغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام صاحب موجود ہیں. جی قیصر امام صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب سہونی حکومت کے حالیہ جارحیت کے اہداف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کن مقاصد اور اہداف کے تحت اس نے یہ جارحانہ اقدام کیا ہے؟
دیکھیں جہاں تک سہونی حکومت کے جو اقدامات ہیں اور ان کے جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں کوئی نئی بات بالکل نہیں ہے. گزشتہ کئی سالوں سے یہ حکومت جو ہے جس کو یورپ اور امریکہ کی حمایت مکمل طور پر حاصل ہے بلکہ امداد بھی مکمل طور پر حاصل ہے, ان کے اہداف بڑے سمپل ہیں, جو نون ہیں, پوری دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کی جو توسیع چاہتے ہیں وہ علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور مڈل ایسٹ کی جتنی دوسری حکومتیں ہیں جو اتفاق سے تمام تر اسلامی حکومتیں ہیں ان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں, کمزور رکھنا چاہتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ مسلم علاقوں میں مکمل طور پر عدم استحکام ہو, افراتفری ہو, اور امن کا بالکل کوئی شائبہ بھی نہ ہو, اور اس طرح سے وہ لوگ کمزور رہیں, ان کو کبھی یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ ان جارحانہ اقدامات کا کوئی جواب دے سکیں. اور دوسری طرف ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا میں ان کی جو حیثیت ہے وہ بڑھ چڑھ کر آگے اور بھی زیادہ اس میں اضافہ ہو, ان کی حیثیت بڑھ جائے, اور جو علاقے ہیں جو ان کا چاہتے ہیں کہ پورے فلسطین پر مکمل طور پر ان کا قبضہ ہو, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اپنی جو ڈکٹیٹرشپ ہے, اپنی جو جس کو کہنا چاہیے کہ مکمل طور پر قابض ہونا چاہتے ہیں علاقے پر, یہ ان کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور اس کو تقویت دینے کے لیے وائٹ ہاؤس جو ہے وہ بھی ان کا ساتھی ہے, ان کا مربی ہے, ان کو امداد دیتا ہے دامے درمے سخرے ہر طرح سے, سیاسی لحاظ سے بھی, مالی لحاظ سے بھی, اسلحے کے اعتبار سے بھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ وہ مکمل طور پر قبضہ چاہتے ہیں ان علاقوں پر, اور چاہتے ہیں کہ باقی تمام لوگ جو ہیں جو اتفاق سے مسلمان ہیں وہ سب ان کے دست نگر رہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور نئے بھی نہیں ہیں, یہ بہت پرانے مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ لوگ ہر روز کوشش کر رہے ہیں اور ہر طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے مقاصد میں مکمل طور پر کامیابی حاصل ہو.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب موجود ہیں. شمسی صاحب السلام علیکم. شمسی صاحب, غاصب سہونی حکومت نے جو حملہ کیا ہے شام کے علاقے قنیطرہ میں, جس میں ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور حزب اللہ کے کئی کمانڈر اس میں شہید ہو گئے, جو وہاں شام کی افواج کو مشورہ دینے کے لیے موجود تھے تکفیری دہشت گردوں کے مقابلے میں, عالمی قوانین اور بین الاقوامی کنونشنوں کی روح سے یہ حملہ کس زمرے میں آتا ہے؟
کہ اگر یہی کام ابھی کسی مسلم تنظیم نے کیا ہوتا تو اس کو سب دہشت گردی کہہ رہے ہوتے کہ کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا, یہی امریکی افواج پر ہوا ہوتا تو اس کو دہشت گردی کہا جاتا افغانستان میں, اگر یہی حملہ جو دوسری اقوام متحدہ کی جو افواج اسی بارڈر پر لگی ہیں گولان ہائٹس کے پاس ان پر ہوتا تب بھی دہشت گردی کہا جاتا, لیکن شرط یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا نام والی تنظیموں نے کیا ہوتا. سہونی حکومت کی جانب سے ہونے والا کوئی بھی اس طریقے کا حملہ اس کو دہشت گردانہ حملہ قرار نہیں دیا جائے گا. سب جانتے ہیں کہ اس وقت ये जितनी शाम में हंगामा आराई है उसकी वजह दरअसल जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि बशार अल असद से इतनी दुश्मनी नहीं है जितनी दुश्मनी इसराइल को हिजबुल्ला से है, और हिजबुल्ला का खात्मा मकसूद है, और हिजबुल्ला की रसद काटने के लिए ये सारी हंगामा आराई करवाई है, जिसके लिए उसने दहशत गर्दों को तरबियत दी है, दहशत गर्दों का इलाज करता है, दहशत गर्दों को पैसा फराहम करता है, दहशत गर्दों को हथियार फराहम करता है, और दाश जैसी जाबिर और जालिम और बेरहम तंजीम बनाने का जिम्मेदार भी इसराइल है। तो इसराइल ने जो कुछ शाम में कर रखा उसका मकसद यह है कि वो बराह रास्त हिजबुल्ला के साथ न उलझे बल्कि कुछ दूसरे तबकों के जरिए से हिजबुल्ला के ऊपर हमला होता रहे और हिजबुल्ला उनमें उलझी रहे। और बहुत गहरी साजिश के तहत, बहुत गहरी साजिश के तहत उन लोगों ने पूरी जो स्ट्रेटजी बनाई वो ये बनाई कि बशार अल असद के खिलाफ कोई सियासी मुहाजराई करने के बजाय जो शियों के शिया फिरके के लिए जो काबिल एहतराम मकामात थे उन पर बमबारी करवाई, हजरत सकीना के रोजे पर हमला करवाया या हजरत जैनब के रोजे पर, क्योंकि उनको मालूम है कि जब इन रोजों पर हमला होगा तो दुनिया में कहीं भी हिजबुल्ला ही नहीं दुनिया में कहीं भी शिया बैठा हो वो वहां जाना चाहेगा और जाकर उसकी हिफाजत करना चाहेगा। तो इसराइल खुद चूंकि शिकस्त खा चुका है 2006 में जुलाई का, आपको मालूम है कि लड़ाई में क्या हशर हुआ था उसका, तो वो बराह रास्त मुदाखलत नहीं चाहता था, बराह रास्त नहीं चाहता था कि हिजबुल्ला को कोई वो चैलेंज करे, लेकिन उसने उसके मुकाबले में अल नुसरा जिबत अल नुसरा दाश और अलकायदा और ऐसी तंजीमों को खड़ा किया कि जिनकी बुनियाद जो है वो मुसलमानों के एक ऐसे गिरोह के हैं जो तकफीरी नजरियात रखते हैं, जो अपने अलावा सब मुसलमानों को काफिर समझते हैं, उनको सामने खड़ा किया ताकि शियों के खिलाफ मुहाजराई हो सके। लेकिन अल्लाह ने कुछ ऐसा किया और अल्लाह की जो करम है और जो अल्लाह की जो मेहरबानी है वो दुनिया के सामने आई कि वही ताकतें जिन्होंने पाल पोस कर जवान किया था इन तंजीमों को आज वही उनके पीछे पिस्तौल लिए दौड़ रही हैं, उन्हीं के पीछे उनके हवाई जहाज दौड़ रहे हैं। तो इसराइल ने कुछ और लिखने की कोशिश की थी लेकिन उसका नतीजा कुछ और सामने आया, और इस वक्त जब मुसलसल इसराइल को ये लग रहा है कि 3.5 साल हो चुके हैं और कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो अब वो चाहता है कि हिजबुल्ला को बरफरोख्ता करे और हिजबुल्ला उस पर डायरेक्ट उसके साथ कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि इस वक्त पूरे यूरोप और मुसलमानों के साथ एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वक्त जो मुसलमानों के साथ एक कन्फ्रंटेशन पेरिस में शार्ली एब्दो के मामले को लेकर हुआ है और जिस तरह मुसलमान ममालिक में उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो पूरे अहले मगरिब के साथ इस्लाम का तसादुम शुरू हो गया है, जो एक दहशतगर्दाना वाक्य से बात शुरू हुई थी उस पर वो मुसलमान भी शामिल हो गए कि जो दहशतगर्दी के साथ नहीं है और हर तरफ एहतजाज हो रहा है। तो इसराइल का इस वक्त ख्याल यह है कि अगर वो इस कन्फ्रंटेशन को अपनी तरफ मोड़े और सिर्फ हिजबुल्ला उसके साथ मारेका आराई करे या ईरानियों की मारेका आराई हो तो शायद फिर एक मरतबा फिर कोई मसला की एतबार से मामला उठ सकेगा। लेकिन इसराइल ने सोचा क्या था और क्या नतायज निकले, और इस बार भी वो क्या सोच रहा है और क्या नतायज निकलेंगे ये तो उसको मालूम नहीं है, क्योंकि जो जिस आजम और इरादे के साथ हिजबुल्ला के सरबराह ने बात कह दी है कि तुम अपनी पनागाहों को तैयार रखो, पनागाहों में आप जानते हैं कि पूरा इसराइल जो है उसमें जमींदोज शहर आबाद हैं जहां के ऊपर पूरी पूरी आबादियां जाकर छुप जाती हैं, और यह इशारा उसी तरफ से है कि तुम्हारे लिए फिर खौफ और हरास के दिन आ रहे हैं। और इसराइल को भी मालूम है कि हिजबुल्ला की ताकत क्या है, और अब तो ईरान से भी एक डायरेक्ट मुचैटा हुआ है, डायरेक्ट मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त में तो नहीं है कि ईरान के कमांडर्स को बराह रास्त किसी हमले में इसराइल ने मारा हो, अगर आपको याद हो या दूसरों को मालूम हो तो बताएंगे, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि कभी इसराइल के हमले में ईरान के इस सतह के कोई कमांडर मारा गया हो या ईरानी अफवाज को नुकसान पहुंचा हो, और वो भी घात लगाकर, मैदान जंग में नहीं घात लगाकर हमला किया गया हो। तो इस वक्त जो मशरिक वस्ता के हालात हैं उनमें चारों तरफ एक ऐसी जंग के बादल दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें इसराइल के शहरियों को घुट के मरने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। जो ये नेतन्याहू ने जो सोचा है कि हम इस वक्त इन पर हमला करके और इनको दबा सकते हैं या इनको खत्म कर सकते हैं या इनको डरा सकते हैं, वो बहुत बड़ी हिमाकत की, और उसके नतायज उनको बहुत जल्द मुझे लगता है कि मिलने लगेंगे, और बहुत जल्द उनको मालूम होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, और वो ये समझ रहा था कि शाम और में जो उसको शिकस्त हुई है उसका बदला वो इधर ले पाएगा या उसको उलझा, क्योंकि वो चाह रहा है कि हिजबुल्ला को उलझा ले अपनी सरहदों की तरफ भी, ताकि जो मुदाफियत داعش کے خلاف اس کی چل رہی ہے وہ کمزور ہو جائے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ داعش کے خلاف جو مدافعت چل رہی ہے وہ کمزور ہوتی ہے, یا اسرائیل کے ساتھ جب نبرد آزمائی ہوگی تو پھر ایک مرتبہ حزب اللہ کو وہی درجہ ملے گا مسلمانوں کی نظر میں جو 2006 کی لڑائی میں تھا, جب مسلمان بلا تفریق مذہب و ملت ہر مسلمان کہا کرتا تھا کہ حزب اللہ ہمارا ہیرو ہے, اور حزب اللہ کا وہی دن آنے والے ہیں انشاءاللہ اگر اس نے اسرائیل کو بھرپور جواب دیا تو.
بہت بہت شکریہ. قندیل صاحب, صہیونی حکومت جب سے آپ دیکھیں کہ یہ 3.5 سال کا عرصہ جو گزرا ہے, جب سے شام میں تکفیری دہشت گردوں کا فتنہ کھڑا کیا گیا ہے, اس وقت سے اب تک اس غاصب حکومت نے کئی بار تکفیری دہشت گردوں کو بچانے کے لیے فضائی حملے کیے ہیں. آج تک عالمی برادری نے, اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں صہیونی حکومت سے جواب طلب نہیں کیا ہے. کیوں اس سے جواب طلب نہیں کیا جاتا؟
بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ شام کے کرائسز میں نہیں بلکہ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں اور اس وقت سے دیکھیں کہ جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک, یعنی پچھلے تقریباً 65 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے, اس پورے عرصے میں اسرائیل نے ایک طرف تو خود ناجائز کاروائی کے ذریعے فلسطینیوں, مظلوم فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکال باہر کیا, اس کے خلاف نہ تو یونائٹڈ نیشن نے نہ کسی اور عالمی ادارے نے کوئی اقدام نہیں کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے 60s میں بھی اور 70s میں بھی اور بعد میں 80s میں بھی آ کر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جنگ کی, اسرائیل نے اردن کے ساتھ جنگ کی, یعنی پورے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی, مصر کو نشانہ بنایا. یہ سارے اقدامات بھی عالمی سطح پر کہیں سے اس کی ریجیکشن نہیں آئے. اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ٹیررزم کے کنسیڈریشن میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے پیمانے پر دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی مخالف شخصیات کو اسرائیلیوں نے قتل کیا, ان کو شہید کیا گیا, اس کی بھی نوٹس نہیں لیا گیا. اور اس وقت چونکہ شام کے اندر ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جو کہ صہیونیوں کا ایک گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا, اس منصوبے کے تحت وہ تو پورے مڈل ایسٹ کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے اور اس کو اپنے حصہ بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے, لیکن حزب اللہ لبنان, حماس اور پھر شام کے اندر جس انداز میں ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو لے کر چلے تھے, اب ان کو اپنی بقا اور سالمیت کی فکر پڑ گئی ہے اور اپنے سروائیول میں وہ الجھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں اب ان کی بقا بھی, یعنی ان کی سالمیت بھی باقی بچتی ہے یا نہیں. ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیکلائن آ رہا ہے اسرائیل کے لیے, اس میں اب اس کو تحفظ دینے کے لیے بڑی طاقتیں بھی میدان میں اتر چکی ہیں, اور بڑی طاقتوں نے جو شام کے اندر کھیل رچایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ شام ایک مضبوط سپورٹ تھی حزب اللہ کے لیے بھی اور صہیونی حکومت کے خلاف بھی. اور شام کے خلاف پہلے بہت سی سیاسی سازشیں بھی رچائی گئیں, لیکن کوئی سازش جب کامیاب نہ ہوئی تو پورے شام کو ایک ٹیررزم کا شکار کر کے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار کر کے بشار حکومت کو گرانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش بھی اب ناکام ہو چکی ہے اور وہاں پر ایک پھر اسٹیبلٹی آ گئی ہے اور جو شدت پسند قوتیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. ان ساری چیزوں سے عالمی طاقتوں کو بھی, عالمی اداروں کو بھی, اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشن کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اور فوری طور پر ایسے اقدامات عمل میں لانے چاہیے تاکہ جو اسرائیل کے جارحانہ اقدامات ہیں اس کو روک سکیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیلی اقدامات کی وجہ سے ڈومیسٹک لیول پر, یعنی لبنان کے اندر یا اس خطے کے اندر, شام کے اندر کوئی انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا صرف اسرائیل ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ یہ عالمی ادارے بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات کی وجہ سے پورے مشرق وسطی کا امن اس وقت خطرے میں ہے, اور کیونکہ एक तरफ इसराइली अपनी प्लानिंग करते हैं और दूसरी तरफ खुद हिजबुल्ला या इसराइल मुखालिफ जितनी ताकतें वो अपनी प्लानिंग करती हैं। अब इसराइल की ख्वाहिशात ये होंगी कि एक आग जंग की आग भड़काई जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ हिजबुल्ला इस वक्त इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि गुज़श्ता दिनों हसन नसरुल्ला ने बड़ी एक दिलचस्प इस्तेलाह में कहा था कि इसराइल मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर है, यानी हिजबुल्ला के सामने उसकी हैसियत एक मकड़ी के जाले की तरह है, लेकिन उसको मगरबी ताकतों ने और आलमी इदारों ने वो स्ट्रेंथ दी हुई है कि जाला अपनी जगह पर खड़ा है। यानी अगर ये मगरबी ताकतों की और आलमी इदारों की स्ट्रेंथ इसके अंदर से हटा दी जाए तो ये बिल्कुल उसी तरह नाबूद हो जाएगा जैसे कि मकड़ी के एक जाले को शायद एक फूंक से भी उड़ा दिया जा सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आज अंदाज़े जहाँ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं तकफीरी दहशतगर्दों की हिमायत में गासिब सेहूनी हुकूमत के का ताज़ा जारहाना हमला, जिसमें हिजबुल्लाह के कई जवान और ईरान के सिपाही पासदारान का एक सीनियर कमांडर शहीद हुआ है। चलते हैं लंदन स्टूडियो की तरफ। कैसर इमाम साहब, जनाब गासिब सेहूनी हुकूमत न किसी आलमी कानून को मानती है, न बैन अलाक्वामी कन्वेंशनों की पाबंदी करती है, जब चाहती है जहां चाहती है हमला करती है, और अमेरिका और यूरोप हिजबुल्लाह को दहशतगर्द कहते हैं। मेरा सवाल यह है कि दहशतगर्दी का कौन सा ऐसा पहलू है जो सेहूनी हुकूमत में नहीं पाया जाता और दहशतगर्दी कि कौन सी ऐसी बात है जो हिजबुल्लाह में उनको नजर आती है?
हेलो
जी, लगता है मेरी आवाज कैसर इमाम तक नहीं पहुंची है। शमसी साहब, मेरा यही सवाल मेरा आपसे है कि अमेरिका और यूरोप हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार देते हैं, इसराइल की हिमायत करते हैं, दहशतगर्दी की कौन सा ऐसा पहलू है जो सेहूनी हुकूमत में नहीं पाया जाता, और हिजबुल्लाह को किस उसूल की बिना पर, दहशतगर्दी की किस तारीफ की बिना पर दहशतगर्द कहा जा सकता है?
कि ये तो बिल्कुल सामने की बात है कि अमेरिका के लिए दहशतगर्दी वही है या अहले मगरिब के लिए दहशतगर्दी वही है जिससे वो मुतासिर होते हों, वरना वो तो दहशतगर्दी को दहशतगर्दों की परवरिश करते हैं, दहशतगर्दों को हथियार देते हैं। जो दहशतगर्दी का जो सबसे बड़ा दौर चला वो तालिबान के, आपको मालूम है कि तालिबान और अलकायदा की किस तरीके से हौसला अफजाई की गई, किस तरीके से उनको मुजाहिदीन का लकब दिया गया जब वो रूस के खिलाफ नबरदाजमा थे। जब तक वो रूस के खिलाफ रहे वो नबरदाजमा रहे और उनको मुजाहिदीन का लकब मिला। उसके बाद इसी तरीके से जब उन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाए, अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाए, तो वो दहशतगर्द करार पाए। यही यहां पर हुआ शाम में कि जब तक अमेरिका के परवरदा, अमेरिका के पाले पोसे हुए दहशतगर्द वहां की शाम की हुकूमत पर हमले करते रहे, उस वक्त तक वो मुजाहिदीन थे, उनको आने के लिए सहूलियात फराहम की जा रही थी, उनको रिक्रूटमेंट पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो दफ्तर खोले बैठे हुए थे अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी में और वहां से लोगों को भर भर के भेज रहे थे, कुछ नहीं था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने अमेरिकी मफादात पर हमले करना शुरू किए उस दिन से वो दहशतगर्द करार पाए। दहशतगर्दी का मेयार क्या है? दहशतगर्दी ये होना चाहिए कि जो निहत्ते शहरियों पर हमला करे, निहत्ते शहरियों को सबसे ज्यादा मारने वाला अगर कोई है तो इसराइल है, उस पर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि दहशतगर्दी फौजी दस्तों पर हमला करने को तो दहशतगर्दी नहीं कहता कोई, फौजियों से मारे का आराई को तो दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता। दहशतगर्दी तो वही है कि जब निहत्ते लोगों को निशाना बनाया जाए, जब निहत्ते लोगों पर वार किया जाए, जब राहगीरों पर बम फोड़े जाएं, जब किसी स्कूल में जाके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाए, वो है दहशतगर्दी। और इसराइल ने कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं किया। अगर पाकिस्तान में आज अभी पेशावर में वाकया हुआ, उससे पहले गजा में कितने बच्चे मारे गए हैं, और वो भी स्कूलों के अंदर, और वो भी उन स्कूलों के जो अक्वामे मुत्तहिदा के अंडर में चल रहे थे। तो ये सारी बातें निगाहों के सामने है दुनिया के, लेकिन दुनिया ने आंखें बंद कर रखी हैं इसराइल के जराइम की तरफ से, और वो बेशरम आदमी जिसको नाम नेतन्याहू है वो शार्ली अब्दो पर हमले के खिलाफ उन लोगों के बीच में जाके खड़ा हो गया और फ्रांस की हुकूमत के साथ खड़ा होकर एहतजाज कर रहा था दहशतगर्दी के खिलाफ। उस वक्त दहशत गर्दी खुद मुस्कुराती हुई फिर रही थी फ्रांस की सड़कों पर कि जो सबसे बड़ा दहशत गर्द है वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है यहां पर ऐलान करने के लिए और हमको हमारे खिलाफ एहतजाज करने के लिए। तो ये जो सारे आलमी इदारे हैं इनसे कोई तवक्को रखना, इनसे कुछ बातें करना फजूल है। ये सिर्फ अमेरिका और इसराइल और अहल मगरिब का मफाद देखते हैं, इनको न जमहूरियत से मतलब है, इनको न दहशत गर्दी से मतलब है। दहशत गर्दी 2000 मुसलमान उसी दिन मारे गए बोको हराम ने मारे नाइजीरिया में, जिस दिन 12 आदमी फ्रांस में मारे गए, लेकिन उन 2000 आदमियों का कोई जिक्र नहीं जो बोको हराम ने मार दिए। उन 12 आदमियों पर सारी दुनिया आंसू बहा रही है कि जो फ्रांस में मारे गए। दहशतगर्दी के दोहरे मेयार हैं, दोहरी बातें हैं, और इसी वजह से ये दहशतगर्दी रोज बरोज पनप रही है। और वो दहशतगर्द जो कम हो जाना चाहिए तो वो बढ़ते जा रहे, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई, उनको पैसा देना, उनको हथियार फराहम करना, और जो असल दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से निगाहें फेर लेना, यही अक्वामे मुत्तहिदा भी कर रही है और यही उसके दूसरी ज़ैली तंजीमें भी कर रही हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, और लंदन स्टूडियो से राबता गोया की बरकरार हो गया है। कैसर इमाम साहब
जी,
जनाब मेरी, हाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। देखिए अभी सहयोनी हुकूमत ने इससे पहले भी कई बार तकफीरी दहशतगर्दों को बचाने के लिए एयर स्ट्राइक किया है। शाम की फौज जब भी रक्का की तरफ बढ़ती है सहयोनी हुकूमत उन पर फिजाई हमला करती है। यह हमला जो अभी किया गया है इसमें भी कुनैतरा पर जिबतुन नुसरा का कब्जा है और ये लोग उसके करीब पहुंचे थे कि इसराइल ने उन पर हमला किया है। यानी तकफीरी दहशतगर्दों को बचाने के लिए इसराइल शाम में मुसलसल हमले कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि शार्ली हेब्दो पे जिन तकफीरी दहशतगर्दों ने हमला किया था, हमला करके शाम फ्रांस में उन्होंने 12 लोगों को मार दिया, यकीनन वो दहशतगर्द थे। फ्रांस ने, अमेरिका ने, पूरे यूरोप ने, सब ने यह कहा कि ये दाइश के अफराद थे, अलकायदा के अफराद थे, तकफीरी दहशतगर्द थे। तो फ्रांस में शार्ली हेब्दो पर हमला करने वाले जो तकफीरी दहशतगर्द थे उनका हमला दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्द हैं, तो उनको बचाने वाला दहशतगर्द नहीं है।
बिल्कुल सही है, जो लोग दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं या जो लोग दहशतगर्दों की इमदाद करते हैं, खा वो असले की सूरत में हो या रकम पैसे और दौलत की सूरत में हो, ये भी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और वो लोग दहशतगर्द हैं। लेकिन एक सिंपल बात है, गुज़श्ता 6-7 साल से एक बात चल रही है कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है, क्या दहशतगर्दी होती क्या है। मैं समझता हूं कि इस बारे में खुद अक़वामे मुत्तहिदा और यूनेस्को भी कोई फैसला नहीं कर सके कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि अगर दहशतगर्दी की कोई भी आप तारीफ तय कर लें जिसको दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कबूल कर लें, तो उसमें सबसे बड़े दहशतगर्द तो खुद अमेरिका और उसके हवारी जो हैं वो ठहरेंगे, जिनमें इसराइल जो है वो सरे फहरिस्त है। सो मैं समझता हूं यही एक वजह है कि दहशतगर्दी की कोई तारीफ जो है वो आज तक नहीं की जा सकी जिस पर हो सके कोई इत्तफाक राय आम लोगों में और दुनिया की दूसरी मुमलकतों में। आजकल दहशतगर्दी दुनिया में वो समझी जाती है जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हो, जो इसराइल और अमेरिका की जो जारहाना सरगर्मियां हैं उनकी मुदाफ़त करने वाले हों, उनको दहशतगर्द कहा जाता है। सो मैं समझता हूं कि ये दहशतगर्दी जिस किस्म की इसराइल करता है उसकी हिमायत जो है वो अमेरिका करता है और अक़वामे मुत्तहिदा में खुलकर होती है ये हिमायत। मैं समझता हूं कि आज तक जितनी भी ऐसी करारदादें सामने आई हैं अक़वामे मुत्तहिदा में जिनमें इसराइल की दहशतगर्दी का जिक्र किया गया है, उनको सिर्फ एक ही मुल्क ऐसा है जिसने उसकी मुखालफत की है और वो अमेरिका है, सिर्फ इसलिए कि वो दहशतगर्दी की, इसराइली दहशतगर्दी की हमायत करना चाहता है और हमायत करता है, और उसी की वजह से वो दहशतगर्दी पनप रही है पूरे मिडिल ईस्ट में। सो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के बारे में सिंपल बात है कि जो लोग इसकी हमायत करते हैं, और हमायत एक और चीज भी है कि दाइश का बजाहर वो लोग कहते हैं कि हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पर्दे में वो टारगेट किलिंग करते हैं उन लोगों की जो लड़ाई में शामिल नहीं है, जो मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, और उनको मारा जाता है। ये जो हमले हुए हैं ये भी इसी पर्दे में हुए हैं कि वो कहते हैं कि हम दाएश के खिलाफ हैं, लेकिन वो दाएश की हिमायत में वहां आए हैं और बेगुनाह लोगों को वो अपने मार रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि ये भी एक पर्दा है दहशत गर्दी को रोकने के लिए, जरूरी है कि दहशत गर्दों के खिलाफ मुतहिद होकर काम किया जाए, और ये मुतहिद होना इस्लामी मुल्कों में, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के इस्लामी मुल्कों में, मैं समझता हूं कि अभी इसका कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा।
बहुत बहुत शुक्रिया जी कंदल अब्बास साहब। देखिए अमेरिका जिस मुल्क पर चाहता है दहशत गर्दों की हिमायत का इल्जाम लगाता है, हत्ता वो अपने करीबी तरीन इत्तेहादियों को भी नहीं छोड़ता। चुनांचे अभी चंद माह कबल की बात है कि उसने कहा था कि उसके बाज इत्तेहादी ममालिक तुर्की कतर सऊदी अरब का उसने नाम लिया था कि ये तकफीरी दहशत गर्द ग्रोहों की हिमायत और पुष्पनाही करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। अमरीका ने इस इलाके में अपने करीबी तरीन इत्तेहादियों के बारे में ये बात क्यों कही और इन मुल्कों का जवाब क्या था? इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू यह नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जिन तकफीरी दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही और हिमायत का इल्जाम अमरीका ने इस इलाके में अपने करीबी तरीन इत्तेहादियों पर लगाया था, उन्हीं ग्रोहों की इसराइल खुल के हिमायत करता है। जिबतुल नुसरा और दाइश के जख्मियों का इसराइल के अस्पतालों में इलाज होता है। अमरीका और यूरोप ने आज तक इस सिलसिले में सहूनी हुकूमत पर न कोई एतराज किया है और न यह कहा है कि सहूनी हुकूमत इन तकफीरी दहशतगर्दों की हिमायत करती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या तजिया है आपका?
देखिए बड़ी वाज़ह सी बात है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी किसी को डिक्लेयर करना दहशतगर्द या दहशतगर्दी का जो मेयार है वो आम तौर पर मगरबी मीडिया के हाथ में हमने सौंप रखा है, और मगरबी मीडिया में ख़ास तौर पर जो ज्यूज यानी सहूनी लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसमें देखिए आप जहाँ पे भी कोई ऐसे इकदाम होंगे जिसमें मुसलमान मुतासर हो रहे हैं तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। आप देखिए अभी फ्रांस में जो वाकया हुआ, और इसमें पेरिस के इमाम जुमा ने अगरचे उस वाक़े को भी रिजेक्ट किया, और इसके साथ एक बड़ी अहम बात की है वो ये कि दुनिया भर में जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसमें 95% उसके मुतासरीन मुसलमान हैं, और 5% अगर वो कोई और हैं तो उसके मुकाबले में 95% मुसलमानों को देखा जाना चाहिए। ये देखिए पेरिस के इमाम जुमा तो ये बात आज कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी बात 2011 में अमेरिकन जो नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनकी भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 2011 में ये कहा था कि पिछले 5 साल की उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक उस डिपार्टमेंट ने भी ये कहा था कि पूरी दुनिया में पिछले 5 सालों के दौरान होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में 82% से लेकर 97% तक जितने भी मुतासर हुए हैं लोग वो मुसलमान हैं, और मजहब की बुनियाद पर या मजहबी आइडेंटिटी की बुनियाद पर अगर कोई चीज़ कोई मुतासर हो रहा है तो उसमें दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुसलमान है। अब इस मयार को अगर सामने रख लें और ये देखें कि आप एक तरफ इसराइल या सहूनी हुकूमत खड़ी है, उसके सरपरस्त जो अमेरिका और यूरोप हैं और बड़े जो आलमी इदारे हैं वो भी उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनी आम बच्चे हाथों में पत्थर उठाए हुए खड़े जब टैंकों के सामने खड़े होते हैं तो वो दहशतगर्द करार पाते हैं, लेकिन जो एग्रेशन हो रहा है इसराइल की तरफ से उसको डिफेंस का नाम दे दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये खुद इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखेरने के मुतरादिफ है। अब इस डेफिनेशन को अगर आलमी अदारे अपने हाथ में नहीं लेते और आलमी अदारे आगे बढ़कर अमन अमान कायम करना नहीं चाहते तो मैं समझता हूं कि ये फिर हिजबुल्ला का, हमास का, शाम का और खित्ते की जो अन पसंद कुवतें उनका ये हक होगा कि जो वहां पर टेररिस्ट है और जो दहशतगर्दी की तमाम तारीफों पर पूरा उतरता है यानी सहूनी हुकूमत, उसको काउंटर करने के लिए वो अपने इकदामात करें। आप खास तौर पर देखिए कि जनूबी लुबनान से हिजबुल्ला ने अपने जोरे बाजू पर इस टेररिस्ट को बाहर निकाला, यानी वो एक काबिज था लुबनान की सरजमीन पर, उसको बाहर निकाला। इसके बाद हमने देखा कि इस वक्त शुमाली सरहदों पर भी हिजबुल्ला की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उस वक्त हिजबुल्ला की जो पोटेंशियल था, जो स्ट्रेटजिक डिफेंस था, वो बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन इस वक्त हिजबुल्ला ने खुद अनाउंस किया है कि उनके पास फाते 110 के नाम से जो मिज़ाइल है वो इसराइल के शुमाली और जनूबी आखिरी सरहदों तक हर टारगेट को निशाना बना सकता है। अब ये 200 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल जब हिजबुल्ला के पास है, अगरचे इसके मुकाबले में इसराइल के पास 1,00,000 से ज्यादा, मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स मौजूद हैं जो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन उसके मुकाबले में वो इस वक्त इतने ज्यादा खौफजद हैं क्योंकि उन्होंने जो एग्रेशन किया वो खुद दहशतगर्दी की डेफिनेशन के अंदर आता है। अगर हिजबुल्ला उसके डिफेंस में अपना कोई इकदाम करेगी तो वो काम मुकम्मल तौर पर जो इंटरनेशनल लॉ है उसके शेल्टर के अंदर आएगा। अब ये काम अगर आलमी अदारे नहीं करते, बड़ी ताकतें नहीं करते, मैं समझता हूँ कि फिर खित्ते की जो अमन पसंद ताकतें होंगी, खुद हिजबुल्ला हो गया, मास होगी, इनको ये पूरा हक हासिल होगा कि वहाँ पर दहशतगर्दी को और दहशतगर्द को काउंटर करने के लिए वो अपने जोर बाजू पर भरोसा करते हुए इकदाम करें।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब, और इसी के साथ हम शकील शमसी और डॉक्टर कैसर इमाम के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल जिबहतुन नुसरा और दाइश को अमरीका और यूरोप वाले भी दहशतगर्द कहते हैं, और इनका कहना है कि इस वक्त पूरे मगरिब को तकफीरी दहशतगर्द ग्रोहों से खतरा है। हिजबुल्ला, जिबहतुन नुसरा और दाइश दोनों से बरसरे पैकार है, तो उसूली तौर पर होना तो यह चाहिए था कि पूरी मगरबी दुनिया को, अमेरिका को, फ्रांस को, यूरोप को, सबको मिलकर हिजबुल्ला का साथ देना चाहिए था, लेकिन यह सब इसराइल के साथ हैं। अमेरिका और यूरोप की हुकूमतें कुछ भी कहें, लेकिन दुनिया जानती है कि जितने भी दहशतगर्द गिरोह हैं, चाहे वो जिबहतुन नुसरा हो, दाइश हो, तालिबान, अलकायदा या कोई भी दहशतगर्द गिरोह, और अमेरिका, इसराइल और इनके इत्तेहादी एक पेज पर हैं, और मशरक वस्ता की जो मुजाहमती कुवतें हैं, हिजबुल्ला, हमास, शाम, ईरान और इनके जितने भी हामी हैं, वो एक पेज पर हैं। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।